मंगल के लिए कठोर प्रयत्न करने में अपने मंतव्य से तनिक भी पीछे न हटे। रचनात्मक कार्यों में बौद्ध प्रवृत्तियों का समुचित सम्मान था।
पाठशालाएं, चिकित्सालय, जलाशय, उद्यान, विश्राम गृह, अन्य क्षेत्र आदि की स्थापना एवं बनवाने में उन्होंने समर्थ व्यक्तियों को पूरा प्रोत्साहन दिया। पशुओं की हत्या और उनके साथ निर्दय व्यवहार को रोकने का समुचित प्रयास किया। ऐसे करुणा संवर्धन के सेवा साधना भरे कार्यों ने जनसाधारण के मन में और भी अधिक गहरा स्थान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम जिन 5 शिष्यों को शिक्षा दी, उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए, धर्म विजय के लिए प्रचार परिव्रज्या पर भेज दिया गया।
5 शिष्य विभिन्न दिशाओं में धर्म प्रचार के लिए चल पड़े।
स्वयं बुद्ध ने भी एक मंडली बनाई और वे स्वयं भी ज्ञान का आलोक फैलाने के लिए भ्रमण करने लगे। बौद्ध धर्म के महाबग ग्रंथ में इस धर्म चक्र प्रवर्तन के उद्देश्य, स्वरूप और क्रियाकलाप का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मगध राज्य में गया, वेल, राजगृह, नालंदा, पाटलिपुत्र, दक्षिणगिरी, अंधकबिंद, कल्लवाल, सुत्तागाम स्थानों में बुद्ध के प्रचार कार्य का विस्तृत उल्लेख मिलता है। उन्होंने कौशल राज्य में जाकर भी अपनी प्रक्रिया को विस्तृत बनाया। बुद्ध के प्रतिपादन इतने प्रखर, तथ्यपूर्ण और न्यायोचित थे कि उन्होंने राजा प्रजा सभी के विवेक को झकझोरा और उस विचारधारा को अपनाने के लिए बाध्य किया। मगध का राजा बिंबसार उनका अनुयायी बना। कौशलराज प्रसेंजित ने सपरिवार उनसे दीक्षा ली। अवंती नरेश प्रद्योत, कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी बुद्ध धर्म ग्रहण किया। राजा ही नहीं, उस काल के सभी वर्गों के मूर्धन्य व्यक्ति उस प्रतिपादन से प्रभावित होकर अभियान में सम्मिलित हो गए। सुदत्तनाथ पिंडिक जैसे व्यापारी, यश जैसे समृद्ध नागरिक, काश्यप जैसे विद्वान, जीवक जैसे कुशल चिकित्सक, मौद्गल्यान जैसे महापंडित, भद्रा और क्षेमा जैसी प्रतिष्ठित महिलाएं उस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग देने लगे। बुद्ध द्वारा आरंभ किया गया लोकमानस नवनिर्माण धर्मचक्र द्रुतागति से अग्रगामी बनने लगा। छोटा बीज अंकुरित होकर किस प्रकार ऊंचा उठता है, इसका जीवंत उदाहरण 5 से आरंभ हुए धर्म प्रवर्तन अभियान के कुछ ही दिनों में व्यापक बनने की प्रक्रिया में दृष्टिगोचर होने लगा।
यह धर्मचक्र प्रवर्तन मात्र कुछ के प्रयासों तक ही सीमित नहीं रहा, वरन अन्य अनेक महामानवों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से उसे आगे बढ़ाया।
वर्धमान महावीर उन्हीं दिनों लगभग ऐसा ही प्रयास करने में निरत थे। पीछे इस प्रयास को जैन धर्म नाम दिया गया। भारत से बाहर भी ये विचार क्रांति लहरें मारने लगी।
लगभग उन्हीं दिनों यूनान में परमेनाइडिस, चीन में लुत्जे और कन्फ्यूशियस, ग्रीस में सुक्रात, बेबिलोनिया में ईसा मसीह, ईरान में जरदुस्त ऐसे ही प्रयास करने में संलग्न हुए।
क्रांति की हवा सभी दिशाओं में अपने साथ ऐसे दावानल को लेकर फैली कि अंधकार, अनाचार का प्रचलन पग पग पर रोष एवं तिरस्कार का भाजन बनने लगा।
बुद्ध के जीवन काल में वह अभियान प्रधानतः भारत की सीमाओं में ही रहा, पर उसका क्षेत्र बराबर बढ़ता और व्यापक बनता चला गया।
उसमें संभ्रांत लोग शामिल होते चले गए। विचारशील वर्ग ने मुक्तकंठ से उसे सराहा और सहयोग दिया। तदनुसार जनता ने भी उसे श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य किया। भद्रक, अनुरुद्ध, किम्बिल, भरेगु, नंद, आनंद, उपली जैसे प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिला। शाक्य, मल, मग्ग, कोलिया, बुली, मौर्य और लिच्छिव देश के लोगों ने सामूहिक रूप में बौद्ध धर्म में प्रवेश किया।
वैशाली और कुशीनार के राजाओं का सहयोग इस प्रयोजन में बहुत सहायक सिद्ध हुआ।
महिलाएं भी उस महाक्रांति को अग्रगामी बनाने में पूरे उत्साह के साथ आईं।
महाप्रजापति गौतमी के प्रभाव से शाक्य वंश की सहस्रों महिलाएं बुद्ध की अनुगामिनी बनी। विशाखा और अम्बापाली ने उस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनाथ पिंडिक की पुत्री के अथक प्रयास ने तो सारे भान प्रदेश को ही उस रंग में रंग दिया।
कौशाम्बी की रानी सामावती ने अपने पति उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित करा के ही दम लिया। महिला भिक्षुनियां पुरुष भिक्षुओं से किसी भी क्षेत्र में पीछे न थी। अम्बापाली ने अपना विशाल अम्रविन बौद्ध विहार के लिए दान दे दिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ दी बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट स्कूल ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के जीवन काल में ही उनका अभियान महाकच, सुपारक, रोरुक, अपारात्र कुरु, भद्रादि भारत के उत्तर पश्चिम के राज्यों में पूरी तरह जड़ जमा चुका था।
इन राज्यों में अनेकों बुद्ध विहार बन चुके थे।
भगवान बुद्ध ने दूसरे धर्म संस्थापकों की तरह अपनी पूजा कराने या सस्ते स्वर्ग के टिकट बांटने के लिए छिटपुट कार्यक्रमों का प्रचलन नहीं किया।
उन्होंने अपने अनुयायियों को समग्र क्रांति के लिए, सद्धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए प्रेरित किया था।
अस्तु, उनके अनुयायी अपने धर्मगुरु के न रहने पर भी उस पुनीत प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए उत्साहपूर्वक तत्पर बने रहे। संपन्न लोगों ने मुक्त हस्त से अपने खजाने खाली कर दिए। प्रभावशाली लोगों ने अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा लाभ उस मिशन को दिया। विद्वानों ने समर्थन का पहाड़ जितना साहित्य जुटा दिया।
प्रचारकों की टोलियां अतीव कष्ट सहन करती हुई देश देशांतरों को प्रयाण करती रहीं।
इन सबके समन्वित त्याग बलिदान का ही प्रभाव था कि बौद्ध धर्म अपने समय में एक अति महत्वपूर्ण और अनुपम भूमिका संपादन करने में समर्थ हो सका। दूसरे मत मतांतरवादियों की तरह यदि बुद्ध धर्म भी गुरुवंदना अथवा कर्मकांडों के टंटखंट तक सीमित रहा होता तो निश्चय ही बरसाती मेंढकों की तरह उत्पन्न हुए अगणित संप्रदायों की तरह वह भी उपहासास्पद स्थिति में पड़ा रह जाता।
थोड़े अंधानुयायियों के अतिरिक्त और कोई उस विडम्बना की छाया को छूने के लिए तैयार न होता।
बुद्ध धर्म की स्थापना एक क्रांतिकारी अभियान के रूप में हुई थी। अस्तु उनका नश्वर शरीर न रहने पर भी उस अभियान में कोई शिथिलता नहीं आई, वरन चौगुने सौगुने उत्साह के साथ वह अग्रगामी होता चला गया। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आश्रयदाता सम्राट अशोक थे। वे शासन व्यवस्था के आवश्यक कार्यों से बची हुई प्रायः संपूर्ण शक्ति धर्म चक्र प्रवर्तन में लगाते थे। विदेशों तथा भारत के सुदूर क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए अभीष्ट यात्रा साधन वे ही जुटाते थे।
विद्वानों प्रचारकों की शिक्षा दीक्षा के कितने ही विहार बनाने और चलाने का श्रेय उन्हीं को है।
नेपाल के राजवंश में उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह कर उस क्षेत्र में धर्मचक्र प्रवर्तन का नया अध्याय खोला।
उनके पुत्र और पुत्री लंका आदि देशों में गए और वहां संघ की स्थापना की।
धार्मिक स्तर ही नहीं, अशोक के प्रयास राजनीति स्तर पर भी जारी रहे। उन्होंने अपने राजदूत अन्य देशों में भेजकर वहां के राजाओं को बौद्ध धर्मानुयायी होने एवं राजाश्रय देने का सफल अनुरोध किया।
भारत उन दिनों अनेक स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था।
उसके कितने ही राजाओं ने आदरपूर्वक अशोक के अनुरोध को स्वीकार किया और अपने देशों में धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए सहयोगात्मक उत्साह दिखाया। भारत से बाहर गांधार, सुवर्ण भूमि, मलाया, सुमात्रा, सीरिया, मिश्र, मैसेडोनिया, इपिरस, सिरेनिया, यवन आदि देशों में धर्म प्रचार का पथ प्रशस्त होता चला गया।
बौद्ध प्रचारकों की लगन और निष्ठा की जितनी सराहना की जाए उतनी ही प्रशंसा इन राजनीतिक और धार्मिक प्रयत्नों की भी करनी पड़ेगी, जिनके आधार पर प्रचारकों को महत्वपूर्ण सफलताएं उपलब्ध करना संभव हो सका। अशोक के बाद राजाश्रय देने वालों में कनिष्क का नाम आता है।
मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में धर्म विस्तार का श्रेय कनिष्क की अशोक परंपरा अपनाने वाली निष्ठा को दिया जा सकता है। भारत में मगध, कौशल, उज्जैनी, मैसूर, कश्मीर, आंध्र, पुलिंद, चोल, पांड्य आदि देशों का राजाश्रय बौद्ध धर्म को उपलब्ध था। नालंदा, बुलभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, विक्रमपुरी, सोमपुरी, मथुरा आदि की समुन्नत शिक्षण संस्थाएं इन्हीं के सहयोग से चलती थीं। सारनाथ, अजंता, धान्यकूट, सांची, कन्नौज आदि के विशाल देवालय राजकीय संपत्ति से ही निर्मित हो सके थे। सम्राट हर्षवर्धन ने इस दिशा में अधिक समर्थ उत्साह दिखाया।
मिलिंद मिनादर का नाम भी इसी श्रेणी में आता है। यह ग्रीक था, इसका काल ईसा की 5वीं शताब्दी माना जाता है।
उसका उल्लेख मिलिंदपन्ह नामक बौद्ध जातक में विस्तार पूर्वक आता है। उसके प्रभाव से कंधार, पेशावर, काबुल घाटी तथा उत्तर भारत के काश्मीर, पंजाब आदि कितने ही प्रदेश बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। कनिष्क कुशानवंशी चीनी तुर्किस्तान का नागरिक था।
उसका समय ईसा की 1वीं शताब्दी माना जाता है।
मध्य एशिया के सुविस्तृत क्षेत्र में तथा भारत के कतिपय क्षेत्रों में उसका राज्य फैला हुआ था। उसने कितने ही विहार तथा चैत्य बनवाए। इनमें पेशावर का स्तूप 400 फुट ऊंचा था। बौद्ध साहित्य को उसने मध्य एशिया की अनेक भाषाओं में विद्वानों द्वारा अनुदित कराया और उस क्षेत्र के अनेक देशों में धर्म प्रचारक भेजने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आश्चर्यजनक कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का चित्र अंकित था। हर्ष देश के राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की निष्ठा में पूरी तरह रंगे हुए थे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक थे तथा धर्मचक्र प्रवर्तन में भारी योगदान देते थे। इनके समय में भारत में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष चल रहा था, तो भी हर्षवर्धन दोनों को परस्पर पूरक और एक ही वृक्ष के दो डालियां मानते थे। राज्याश्रय में 1000 बौद्ध भिक्षुओं तथा 500 ब्राह्मण संतों के लिए निर्वाह तथा शिक्षा की व्यवस्था होती थी। चीनी यात्री युवान चुआंग सन 630 से 644 तक 14 वर्ष भारत में रहा। उन दिनों हर्षवर्धन का शासनकाल था। चुआंग ने हर्ष की धर्मनिष्ठा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और एक संस्मरण में यह भी लिखा है कि हर्ष ने समस्त राज्यकोष तथा व्यक्तिगत संपत्ति धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए दान करते हुए अपने शरीर के बहुमूल्य वस्त्र तक उतारकर दान कर दिए थे और अंततः अपनी बहन राज्यश्री के दिए वस्त्र को पहनकर दानवेदी से उठा था। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपना लूट खसोट का मनोरथ तो अच्छी तरह से पूरा किया, पर साथ ही वे इस देश की तत्कालीन श्रेष्ठ संस्कृति के सामने परास्त भी होते चले गए। इतिहास में मीनांडर नामक एक ऐसे ग्रीक आक्रमणकारी का वर्णन है जो क्षेत्र विजय में तो सफल रहा, पर धर्म विजय क्षेत्र में पराजित होकर रह गया। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसकी लंबी चर्चा दार्शनिक विषयों पर होती रही, फलतः वह इतना प्रभावित हुआ कि बौद्ध धर्म में ही दीक्षित हो गया। एक मीनांडा ही नहीं, उन दिनों यूनान के अनेक राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे। इसका क्रमबद्ध इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, पर यूची शासक हतीय के सिक्कों पर शिव और त्रिशूल की मूर्ति छपी रहने से यह स्पष्ट है कि वहां भारतीय धर्म का प्रचलन था।
ग्रीक और पार्थियन लोगों के लेख प्राकृत भाषा में हैं। उनके सिक्कों पर राजा के धार्मिक होने का उल्लेख है।
कुशानवंशी कनिष्क का अधिकृत प्रदेश उज्जैन तथा सांची से लेकर गोबी मरुस्थल तक फैला पड़ा था। उत्तरी भारत से लेकर चीनी तुर्किस्तान तक उसी का राज्य था। चीनी भाषा के धर्मपिटक निदान सूत्र में उल्लेख है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और उसे जीता, किंतु जब वह महाभिक्षु अश्वघोष के द्वारा बौद्ध धर्म के संपर्क में आया तो उसने जीता हुआ सब कुछ लौटा दिया और केवल अश्वघोष नामक विद्वान को तथा भगवान बुद्ध के कमंडल को लेकर हर जाने की भरपाई कर ली। वह स्वयं भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। कनिष्क को वृत्तिक अशोक कहा जाता है।
उसने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारी प्रयास किया।
चीन, तिब्बत, मंगोलिया, खोतान आदि क्षेत्रों से उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट है कि उन दिनों कनिष्क को शासनाध्यक्ष के रूप में ही नहीं धर्माध्यक्ष के रूप में भी लोकश्रद्धा उपलब्ध थी। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की जड़ जमाने का बहुत कुछ श्रेय कनिष्क को दिया जा सकता है, जिसने प्रचारकों के लिए सभी आवश्यक सुविधा सामग्री उपलब्ध की और प्रजा को उसके अनुगमन के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपनी राजधानी पेशावर में 13 मंजिला एक बुद्ध स्मारक स्तूप बनवाया जो 9वीं शताब्दी तक खड़ा रहा।
उन दिनों उसे संसार की उच्चतम इमारत में गिना जाता था। वेल्स लिखित अंडरलाइन ऑफ हिस्ट्री में कहा गया है कि यूनान पर बौद्ध धर्म का भारी प्रभाव पड़ा।
अशोक के 250 वर्ष बाद इस क्षेत्र के जुडिया प्रदेश में ईसा उत्पन्न हुए। उनकी शिक्षाओं पर बुद्ध दर्शन का प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। अशोक द्वारा यूनान में थेराप्यूत नामक वैद्य भेजे गए। उन्होंने चिकित्सा के साथ साथ धर्म प्रचार भी जारी रखा। उनके अनुयायियों का थेराप्यूत एक वर्ग भी बन गया। पीछे उनकी चिकित्सा पद्धति पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का एक अंग बन गई, जिसे थेराप्यूटिक्स कहते हैं। सिकंदरिया के प्रचारकों के साथ साथ व्यापारी भी पहुंचे और वहां उनने अपनी बस्तियां बसाईं।
इतिहास लेख क्लीमेंट और क्रिस्टोस्टम के अनुसार सिकंदरिया में कई जाति के भारतीय बड़ी संख्या में रहते थे। प्रचंड अभियान अक्सर आंधी तूफान की तरह बढ़ते हैं।
तब उनके सामने दो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
एक यह कि उनमें कूड़ा कचरा आकर मिल जाता है और वह उस पवित्र प्रवाह को गंदा बनाने लगता है। दूसरी यह कि अगणित मनुष्यों के सहकार से आंदोलन चलने के कारण उसकी विभिन्न दिशाओं में खींचतान होती है। कोई प्रवाह को एक दिशा में ले जाना चाहता है तो कोई दूसरी दिशा में।
इन दो कठिनाइयों के कारण सदुद्देश्यपूर्ण अभियानों के सामने भी उनके असफल हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।
दूरदर्शी नेतृत्व इन दोनों चट्टानों से बचाकर जहाज को आगे बढ़ाता है। बुद्ध के नेतृत्व में आरंभ हुई विचार क्रांति को भी इन दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस अभियान में उच्छृंखल तत्व घुस पड़े थे और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उस प्रवाह का उपयोग करना चाहते थे।
यदि उनकी बात चलने दी जाती तो उससे चंद स्वार्थी तत्वों का व्यक्तिगत लाभ तो खूब होता, पर लक्ष्य की पूर्ति कठिन हो जाती। बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही समय उपरांत सुभद्र नामक महत्वाकांक्षी भिक्षु ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया, अच्छा हुआ बुद्ध मर गए, हम लोग उनके चंगुल से छूटे, अब हम स्वच्छंदता पूर्वक जो चाहेंगे सो करेंगे। इस प्रकार के महत्वाकांक्षी व्यक्ति कम नहीं थे और वे अपना अपना अलग वर्ग खड़ा करने को उतारू थे। इसी प्रकार विचार क्रांति की मूल दिशा में अस्त व्यस्तता उत्पन्न करके कोई उसे तंत्र विद्या में, कोई ज्ञान वैराग्य में, कोई कोई बहुमूल्य स्मारक निर्माण में, कोई अध्ययन अध्यापन में सीमाबद्ध करना चाहते थे। इस खींचातान को रोकने के लिए दूरदर्शी विवेकवान लोगों ने समय समय पर विचारशील लोगों की महापरिषदें बुलाई, जिन्हें संगीति नाम दिया गया।
इतिहास में ऐसी कई संगीतियों का विवरण मिलता है।
प्रथम संगीति। मगध के राजा अजातशत्रु के आवाहन पर प्रथम संगीति राजगृह के समीप सप्तपर्णी गुहा में हुई। इसमें 500 अहंत एकत्रित हुए। सभापतित्व महाकाश्यप ने किया। परिषद 7 मास तक चली। इसमें उपली और आनंद नाम के दो विद्वान भिक्षुओं को बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध आचार का एक प्रामाणिक स्वरूप प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। भगवान बुद्ध मात्र प्रवचन करते थे, उनके विचारों और निर्देशों को लेखबद्ध करना आवश्यक था। इस प्रथम परिषद को यही महत्वपूर्ण कार्य करना था। द्वितीय संगीति। स्थविर यश ने द्वितीय संगीति वैशाली में बुलाए। यह 8 मास तक चली। इसमें 700 भिक्षु सम्मिलित हुए।
इसका मुख्य उद्देश्य संघ में पड़ी फूट और विश्रृंखलता का निराकरण करना था।
मतभेद बढ़ रहे थे और आक्षेप के कारण उत्पन्न हो रहे थे। भिक्षुओं का आचार गिर रहा था और वे मर्यादाओं को तोड़कर मनमानी करने पर उतारू थे। इसलिए इस संगीति में ऐसे निर्णय किए गए जिनसे स्वेच्छाचार की संघ द्वारा तथा जनता द्वारा भर्त्सना की जा सके।
संघ के सदस्यों को अनुशासन में रहने के लिए बाध्य होना पड़े।
तृतीय संगीति। सम्राट अशोक ने बौद्ध क्रांति को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से तृतीय संगीति का आयोजन किया। मौदागली पुत्र तिष्य ने उसका आमंत्रण भेजा। अशोकाराम में 1000 भिक्षु एकत्र हुए। 9 मास तक यह सम्मेलन चला। त्रिपिटक का संकलन कार्य वहीं संपन्न हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात थी भारत से बाहर समस्त विश्व में बौद्ध दर्शन को व्यापक बनाने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। योजना सुनिश्चित हुई और 9 प्रचारक मंडल देश देशांतरों को भेजे गए। 1 मंगझांतिक, 2 महादेव, 3 राकीवत, 4 योंधम राकीवत, 5 महाधम्य राकीवत, 6 मज्झिम आदि, 7 महाराकीवत, 8 सोन उत्तर, 9 महिंद आदि।
इन 9 प्रचारकों के नेतृत्व में भिक्षु मंडलियां धर्म विजय के लिए निकल पड़ी और उन्होंने भारत के सुदूर प्रांतों की तथा विश्व के विभिन्न भागों की यात्राओं के लिए कमर कस ली।
गांधार, यूनान, अरब, मिश्र, पेगू, सालमीन, लंका, मध्य एशिया, पूर्वी द्वीप समूह आदि देशों में यह मंडलियां कष्टसाध्य यात्राएं पूरी करती हुई पहुंची और उन्होंने दूरवर्ती स्थानों में भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना करते हुए धर्म संस्थापना में आशातीत सफलताएं प्राप्त की। बौद्ध साहित्य के महावंश और दीपवंश नामक पाली भाषा के प्रामाणिक ग्रंथों में इन यात्राओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है।
सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में भी इन प्रचार यात्राओं का वर्णन है। उसमें लिखा है, धर्म विजय देवताओं की विजय है।
अंतिमोन, तुरुमे, अंतिकिनी, माक, अलिसुंदर राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। चौल, पांड्य, ताम्रपर्णी, यौन, कम्बोज, नामपंक्तियों, भोजपितिनिकों, आंध्र पुलिंदों पर धर्म विजय प्राप्त हुई। इन क्षेत्रों को अब के भूगोल के अनुसार सीरिया, मिश्र, उत्तरी अफ्रीका, एपिरस, मेजिडोनिया, लंका, कम्बोज, यूनान कहा जाता है। महावंश के अनुसार कश्मीर और गांधार में 80,000, वनवासी में 60,000, अप्रांत में 27,000, महाराष्ट्र में 84,000, यून में 70,000, सुवर्ण भूमि में 60,000 मनुष्यों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की।
इन सभी देशों में बौद्ध विहार स्थापित हुए।
उनमें धर्म विजय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुनियां प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। चतुर्थ संगीति। महाश्रमण पार्षव ने कनिष्क के प्रोत्साहन से 4थी संगीति बुलाए।
उसका आयोजन कश्मीर में श्रीनगर के निकट कुंडलवन में किया गया।
सभापति वसुमित्र थे और उपसभापति अश्वघोष। 500 विद्वान भिक्षु उसमें सम्मिलित हुए। त्रिमिटक ग्रंथ के सूत्र, विनय और अभिधर्म अध्यायों पर 1,00,000 श्लोकों के भाष्य की रचना का निर्णय इसी में हुआ। बौद्ध धर्म में जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे उनका निराकरण एवं समन्वय इसी संगीति में किया गया।
चुलबग, महाबग और दीपवंश बौद्ध ग्रंथों में इन संगीतियों का जो विवरण दिया गया है उसमें कुछ कुछ मतभेद भी हैं। किस संगीति में कितने भिक्षु एकत्रित हुए उनकी संख्या इन ग्रंथों में समान नहीं है। कारण और विवरणों में अंतर है।
इस मतभेद के आधार पर प्रथम संगीति महाकाश्यप ने बुलाई थी। राजा अजातशत्रु ने उसका प्रबंध कराया था।
उन दिनों के संघ प्रमुख आनंद पर जो आक्षेप लगाए जा रहे थे उनका निराकरण किया गया। दूसरी परिषद में भिक्षुओं ने उच्छृंखलता बरतनी आरंभ कर दी।
उन पर 10 प्रतिबंध लगाते हुए कठोर आचार संहिता निर्धारित की गई थी। तीसरी परिषद में उच्छृंखलता बरतने वाले भिक्षुओं को संघ से पृथक किया गया था। चौथी परिषद में विभिन्न देशों के बीच भाषा संबंधी कठिनाई का हल खोजने के लिए संस्कृत को विश्वभाषा घोषित किया गया था।
इन 4 महापरिषदों के अतिरिक्त स्थानीय छोटी छोटी संगीतियों के भी विवरण मिलते हैं। महावंश के अनुसार लंका में 3 परिषदें हुई।
पहली राजा देवानाम प्रयुतिष्य 247 से 207 BC के शासनकाल में एरिट थेर के सभापतित्व में राजधानी अनुराधापुर में संपन्न हुई। इसमें अशोक पुत्र महेंद्र भी सम्मिलित हुए। दूसरी राजा भट्टगामिनी अभय 101-77 ईसा से पूर्व के शासनकाल में थेर रक्षित की अध्यक्षता में अक्षु विहार में।
तीसरी सन 1865 में सिंगल रत्नकर में एक दुविश्री सुमंगल की अध्यक्षता में। थाईलैंड स्याम्प में 2 परिषदें हुई।
एक चेगमाई में राजा धर्म चक्रवर्ती तिलक के शासनकाल में, दूसरी बैंकॉक में। मांडले के राजा बिंदीन मन की संरक्षता में प्रथम परिषद हुई जो राजमहल में 5 महीने तक चली। इसमें 2400 बौद्ध विद्वान एकत्रित हुए।
दूसरी परिषद रंगून में हुई।
अभिभज महारत गुरु भदंत रेवत इसके अध्यक्ष थे। इनमें 500 भिक्षु सम्मिलित हुए। लंका, स्याम और बर्मा में हुई उपरोक्त संगीतियों का उद्देश्य सामयिक समस्याओं का समाधान, भावी कार्यक्रमों का निर्धारण एवं धर्म चक्र प्रवर्तन को अधिकाधिक गति देते हुए धर्म विजय के लक्ष्य को अधिक से अधिक समीप लाना था। उपासनात्मक कर्मकांड एवं प्रार्थना प्रवचन भी उनमें होते रहे, पर उन सम्मेलनों का प्रमुख प्रयोजन यही था कि भगवान बुद्ध ने व्यापक अंधकार से जूझने का जो लक्ष्य सामने रखा था उसमें उनके अनुयायी शिथिलता न आने दें और साहसिक कदम बढ़ाने के लिए संगठित प्रयत्न करें। भगवान बुद्ध अपने उत्तराधिकार में जो त्याग, बलिदान, साहस और पुरुषार्थ अनुयायियों को दे गए थे, उसे उन्होंने बहुत संभाल संजोकर रखा और मिशन को ही अपना जीवित धर्म गुरु मानकर उसे सींचने के लिए शक्ति भर अनवरत प्रयत्न करते रहे।
उन दिनों संस्कृत पंडितों की भाषा थी और पाली सामान्य जनों की,
पर संस्कृत में भी बौद्ध धर्म को प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ लिखे जाते रहे। विद्वानों ने यह साहित्य सृजन इतने उत्साह के साथ किया कि ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों का विस्तार उनके सामने हल्का पड़ने लगा।
साहित्य सृजन की तरह बुद्ध के अनुयायियों में धर्म संस्थान बनाने के लिए भी बहुत उत्साह रहा। तथागत के जीवन से संबंधित स्थानों में तथा अन्य प्रचार सुविधा के क्षेत्रों में विशालकाय भवन खड़े किए गए। ये केवल स्मारक नहीं थे, वरन उन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए प्रकाश केंद्रों के अनुरूप बनाया गया था।
धर्मप्रचारकों के निवास, निर्वाह, प्रशिक्षण के लिए वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। इन केंद्रों में उन सभी प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता था जिससे धर्म धारणा की पुष्टि और विश्वव्यापी प्रचार अभियान की गतिशीलता को समुचित पोषण मिलता रहे। भारत में भगवान बुद्ध की स्मृति में बने चार स्थान अधिक महत्वपूर्ण हैं। 1. लुम्बिनी, जहां वे जन्मे। 2. बोध गया, जहां आत्मबोध प्राप्त हुआ। 3. सारनाथ, जहां प्रथम प्रवचन दिया। 4. कुशीनगर, जहां शरीर त्यागा। इसके अतिरिक्त 1. श्रावस्ती, 2. संकाश्य, 3. राजगृह, 4. वैशाली भी तथागत के समय में धर्मचक्र प्रवर्तन के केंद्र रहे हैं। इन आठों स्थानों को बौद्ध धर्मावलंबी एक प्रकार से तीर्थ मानते हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी दर्शन यात्रा करते हैं।
लुम्बिनी नेपाल की तराई में सामिंदेई कस्बे के निकट है। बोध गया हिंदुओं के गया तीर्थ से 6 मील आगे है।
सारनाथ वाराणसी के समीप है। कुशीनगर गोरखपुर जिले के कासिया के समीप है।
श्रावस्ती, जिसे जैतवन विहार भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बहराइच नगर से लगभग 20 मील दूर है।
संकाश्य सांकिया बसंतपुर फर्रुखाबाद उप्र
के देहाती क्षेत्र में है।
राजगृह पटना जिले का राजगीर नगर है। वैशाली बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बसार गांव के समीप था। आठों स्थानों को बौद्ध साहित्य में अठ महाठानानी अष्ट महास्थान कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त भारत में कुछ और भी स्थान ऐसे हैं जिनसे वहां किसी समय बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र होने का प्रमाण मिलता है।
1. सांची, मुंबई से 549 मील। 2. नालंदा बिहार के राजगीर कस्बे से निकट बड़ा गांव। 3. गिरनार जूनागढ़ सौराष्ट्र से 7 मील समीप ही सिद्धसर की गुफाएं। 4. तलाजा भावनगर सौराष्ट्र समीप ही सानहा में 62 गुफाएं। 5. बुलभी भावनगर से 22 मील। 6. कांपिलिय गुजरात में नवसारी के निकट। महाराष्ट्र प्रांत में भज कोंडाने पितलखोर अजंता बेदसा नासिक जुन्न कोले कान्हेरी गोवा। दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा महियोल जगतपेटा गुसेवाडा घंटिशाल नागपटम श्रीमूलवासम कांचीपुरम आदि।
अमरावती का स्तूप अपने धर्म का अनोखा है। ऐसे सहस्रों स्थान अब भी भारत में जहां तहां देखे जा सकते हैं जहां किसी समय बौद्ध धर्म की साधना तथा शिक्षा के विशालकाय प्रयासों का सहज ही आभास मिलता है। अपने समय में भगवान बुद्ध की प्रेरणा और उनके अनुयायियों की उदारता कर्मठता ने जो कार्य किया उससे एक बार भारत भूमि में चिर अतीत की झांकी पुनः होने लगी।
लगभग 2.5 लाख भिक्षु और भिक्षुनी सज्जन सेना के रूप में भावनात्मक नवनिर्माण के लिए जुट गए।
उसका सत्परिणाम भारत में सत्ययुगी परिस्थितियों के रूप में सामने आया और उन दिनों समस्त एशिया में समस्त विश्व में एक नवीन उल्लास का संचार हुआ।
बौद्ध धर्म के प्रभाव प्रसार की अवधि को उस समय का सुखद सौभाग्य काल कहा जा सकता है। मध्य एशिया का खोतान क्षेत्र बृहत्तर भारत का एक अंग। तकला मकन मरुस्थल के दक्षिणी सिरे पर यूरनकाश नदी बहती है। उसकी हरी भरी सुरम्य घाटी का नाम खोतान है। यह क्षेत्र यारकंद से दक्षिण पूर्व में लगभग 200 मील है।
यूरनकाश और कराकाश नदियां इसे सींचती हैं। दोनों नदियां जहां मिलती हैं वहीं से उसका सम्मिलित नाम खोतान पड़ जाता है।
यह आजकल चीनी तुर्किस्तान के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र पर ईसा से 53 वर्ष पूर्व राजा विजय संभव का शासन था। इसके बाद कब राजा भूमिमित्र का शासन हुआ। इन्हीं दिनों कश्मीर से अरहत विरोचन नामक एक बौद्ध भिक्षु खोतान पहुंचा। उसने राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया और प्रजाजनों ने भी उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। उसी समय सरमा नामक एक बौद्ध बिहार बना और संस्कृत से मिलती जुलती ली भाषा का प्रसार हुआ।
तिब्बती सूत्रों में प्रथम बौद्ध राजा विजय संभव को ही बताया गया है।
उनके वंशज विजय वीर्य ने गंगतर चैत्य और गोशंग बिहार का निर्माण कराया।
इसके बाद इस वंश के 11वें राजा विजय जय ने चीन की राजकुमारी लुशि से अपना विवाह कर लिया।
उसके नाम से राजधानी से 6 मील पर लुशि बौद्ध विहार बना।
इस प्रकार चीनियों को उस प्रदेश में घुसपैठ करने का अवसर मिला और अंततः उस क्षेत्र की आधी आबादी चीनी और आधी भारतीय हो गई।
विजय जय के 3 पुत्र थे। इसमें से विजय धर्म राज्याधिकारी बना, दूसरा धर्मानंद बौद्ध भिक्षु बन गया। उसने भारत की तीर्थयात्रा की और वापस लौटकर उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
उन्हीं दिनों 8 नए विहार बने।
भारत से मंत्र सिद्ध नामक एक प्रकांड विद्वान वहां धर्म प्रचार के लिए पहुंचा। उसने संगतीर नामक एक नए विहार की स्थापना की। सन 404 में चीनी यात्री फाहियान कूचा होता हुआ खोतान पहुंचा। उसने इस क्षेत्र की समृद्धि को भरपूर सराहा है और लिखा है, यहाँ के सब निवासी बौद्ध हैं।
घर घर के आगे स्तूप बने हैं। उस देश में 14 बड़े संघाराम हैं। पर्वों पर प्रतिमाओं के शानदार जुलूस निकलते हैं। उसके निर्माण में 80 वर्ष लगे हैं। 3 राजाओं के शासन में वह पूरा हो पाया है।
स्तूप की ऊंचाई 290 फुट है। सन 519 में एक दूसरा यात्री सुंगयुग खोतान पहुंचा। उसने लिखा, यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं,
हड्डियों पर स्तूप खड़ा किया जाता है, मृतक के संबंधी सिर के बाल मुंडाते हैं।
सन 644 में तीसरा यात्री हवेनत्सांग खोतान पहुंचा।
उसने लिखा है, यहाँ की भाषा भारतीयों से मिलती जुलती है, लिपि में भी थोड़ा सा ही अंतर है,
बौद्ध धर्म को मान्यता है।
इस क्षेत्र में 16 के करीब संघाराम है। यहाँ का राजा बौद्ध है और अपने को वैराचन वंश का कहता है।
तिब्बत के इतिहास से पता चलता है कि सन 1007 में इस क्षेत्र पर एक चीनी राजा लोयुल का आधिपत्य हो गया था। उसने बौद्ध धर्म को उखाड़ने के लिए भारी अत्याचार किए।
अंततः भिक्षुगण वहां से भाग खड़े हुए और वे तिब्बत तथा गांधार क्षेत्र में छित्रा गए।
तुर्की इतिहास के अनुसार सन 1000 में तुर्क आक्रांता यूसुफ कादर खान ने इस क्षेत्र पर हमला किया और वहां फैले हुए बुद्ध धर्म को उखाड़कर इस्लाम धर्म की स्थापना की।
125 वर्ष के शासन काल में उन्होंने वहां की जनता में से अधिकांश को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया।
1218 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने इस क्षेत्र पर हमला किया। उसने मंगोलिया से लेकर ऑस्ट्रिया तक अपना आधिपत्य जमाया।
इसी सिलसिले में खोतान भी उसके कब्जे में आ गया।
उसके बेटे कुबेलई खान ने इस प्रदेश को पूरी तरह इस्लाम बना दिया।
सन 1878 में इस देश पर चीन का कब्जा हो गया। अब वह उसके सिनक्यांग प्रांत का एक प्रमुख अंग बनकर रह गया है। दंदान यूलिक नगर में भी अभी भी चारों ओर बुद्ध अवशेष बिखरे पड़े हैं। खुदाई में एक और बौद्ध मंदिर निकला है, जिसमें खड़ी और बैठी भगवान बुद्ध की कितनी ही प्रतिमाएं हैं।
दीवारों पर तथागत की जीवनचर्या संबंधित भित्तिचित्र हैं।
लकड़ी पर गणेश प्रतिमा है।
कुबेर वैश्रवन की मूर्तियां भी मिली हैं।
इसी मंदिर में एक ग्रंथ भी मिला है जो ब्राह्मी लिपि में है। तालपत्रों पर तथा काष्ठ पत्रों पर लिखे और भी लेख हैं।
युवकन नगर के पास समग्या मोजीरो जोह नामक एक स्थान के समीप स्तूपों के सैकड़ों ध्वंसावशेष अभी भी उपलब्ध हैं।
होकोप के जर्जरित बिहार में बुद्ध भगवान के 10 बड़े चित्र तथा ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में तालपत्रों पर लिखे 8वीं शताब्दी के ग्रंथ मिले हैं। इसी में एक शंकर जी का काष्ठ चित्र भी है।
पुरातत्ववेता अरल स्टेन ने एंशंट खोतान, इनरमोस्ट एशिया आदि ग्रंथों में उन अवशेषों और उद्धरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिनसे खोतान क्षेत्र में प्राचीनकाल की बौद्ध संस्कृति पर गहरा प्रकाश पड़ता है।
यूरनकाश नदी के पश्चिमी किनारे पर बसे रोतकन नगर में जो अवशेष मिले हैं, उनमें भारतीय राजाओं के 8 सिक्के मिले हैं। उनमें से 6 कश्मीरी शासकों के हैं और 2 काबुल के हिंदू राजा सामंत रबे के हैं। एक मुहर पर गौमाता की छाप है। निया नगर में खरोस्त्री लिपि और संस्कृत भाषा में काष्ठ पत्रकों पर लिखे लेख मिले हैं। कुछ चमड़े पर भी लिखे हैं। एक स्तूप तो अभी भी वहां जीवित अवस्था में खड़ा है, जिसकी दीवारों पर बुद्ध के चित्र बने हैं। एंडेर नगर के समीप रेत के टीले में दबा एक मंदिर मिला है, जिसमें बुद्ध की 4 मूर्तियां और कुछ रत्नजटित आभूषण भी मिले हैं। एक गणेश चित्र भी है।
तिब्बती भाषा में लिखा शालिस्तंभ सूत्र भी यहां प्राप्त हुआ है।
दलाया मज स्थान के आसपास बौद्ध विहारों के ढेरों अवशेष बिखरे पड़े हैं।
अक्कन तिमी नगर का जर्जर स्तूप वहां किसी समय की बड़ी चढ़ी बौद्ध संस्कृति का स्मरण दिलाता है।
एक्सिपिल के ध्वस्त मंदिर की दीवारों पर तथागत की अभय मुद्रा में मूर्तियां बनी हैं।
ऐसी ही अन्य कितनी ही टूटी मूर्तियां यहां उपलब्ध हुई हैं।
एक्सिपिल के उत्तर में रेत के टीलों में दबा किसी समय का रबक विहार और स्तूप मिला है।
इसमें आदमकद बुद्ध प्रतिमा भी है।
भित्तिचित्रों में बुद्ध के जीवन वृतांत से संबंधित घटनाएं अंकित हैं।
इतिहास बताता है कि खोतान को अशोक पुत्र कुस्तन ने ईसा से 240 वर्ष पूर्व बसाया। उसके प्रपौत्र विजय संभव ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष रुचि ली और पहला विहार ईसा से 211 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। 8वीं सदी तक इस क्षेत्र में लगभग 1000 वर्ष तक बौद्ध धर्म छाया रहा। निय काल मदन चर्चेन क्रोराइना लून और कोकू काश्नर उसके प्रमुख केंद्र थे।
आज का चीनी तुर्किस्तान ईसा की प्रथम शताब्दी में चार राज्यों में बंटा था, एक मरुक एक्सू, दो आंध्रदेशकर शहर, तीन काओ चंग, चार कूचा। इन चारों में सबसे समृद्ध था कूचा, जहां बौद्ध धर्म की गहरी जड़ जमी। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि उन दिनों कूचा में लगभग 1000 बौद्ध विहार और मंदिर थे। स्तूपों का जाल बिछा हुआ था। यहीं से शेष तीन राज्यों में प्रचार की योजना बनाई जाती थी।
बौद्ध साहित्य का क्षेत्र की भाषाओं में अनुवाद कार्य करने के लिए राज्याश्रय से बड़ी राशि प्राप्त होती थी।
सहस्रों विद्वान उस कार्य में जुटे रहते थे। इन ग्रंथों को वहां के धर्म स्थानों और पुस्तकालयों में सम्मानपूर्ण स्थान मिला। इससे इस विचारधारा के व्यापक बनने में बड़ी सहायता मिली।
इससे पूर्व उस क्षेत्र में कन्फ्यूशियस धर्म और ताओमत फैला हुआ था। निस्संदेह बौद्ध दर्शन उसकी तुलना में अधिक गहरा और अधिक प्रभावोत्पादक था। साथ ही बौद्ध भिक्षु स्वयं जिस प्रकार का आदर्श जीवन व्यतीत करते थे, वह भी कम आकर्षक नहीं था।
जनता का हृदय जीतने और बुद्धि को आकर्षित करने में इन दोनों ही कारणों से आशाजनक सफलता प्राप्त हुई।
बुद्धिजीवियों ने उसका भरपूर समर्थन और स्वागत किया। विद्वान माओत्सेंग ने द्वितीय शताब्दी के अंत में एक वार्तिक भाष्य लिखा, जिसमें बौद्ध धर्म के साथ चीन के प्रचलित धर्मों की तुलना की गई और बौद्ध दर्शन को हर दृष्टि से श्रेष्ठ ठहराया।
ऐसा ही प्रतिपादन अन्य स्थानीय विद्वानों ने भी किया है। युनकांग हनमेन उन हुआंग आदि से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य की भली प्रकार पुष्टि होती है। ईसा की प्रथम सदी में मध्य एशिया के खोतान से लवनौर तक के लंबे प्रदेश में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। इस प्रदेश की सरकारी भाषा खरोष्ट्री थी, जिसे संस्कृत की ही पुत्री कहा जा सकता है।
इलियट कृत हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ग्रंथ से स्पष्ट है कि मध्य एशिया की तारिम घाटी में किसी समय बौद्ध धर्म ही व्याप्त था। उस क्षेत्र की सीमा थी उत्तर में टीनशान पर्वत श्रेणी, दक्षिण में कश्मीर तिब्बती पठार और कुनलुन पर्वत श्रेणी, पूर्व में चीन नंशन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में इमोस पर्वत श्रेणी।
इस क्षेत्र को आजकल रूसी और चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। यह 36 से 43 अक्षांश 73 से 92 देशांश ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है। तारिम घाटी की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 900 मील और उत्तर में कूचा से लेकर दक्षिण में कुनलुन तलहटी तक की चौड़ाई 300 मील से कम नहीं है।
बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में मुद्दतों तक फला फूला। मध्य एशिया यद्यपि एक विस्तृत क्षेत्र है, किंतु उसका बड़ा भाग मरुस्थलीय है।
इसके पूर्व और पश्चिम में तकलामकन का मरुस्थल है, जिसकी सीमा पर निजना बारकंद एवं तारिम नदियों की घाटियों पर मरुद्यानों ओसिस के हरे भरे मैदान हैं। दक्षिण में कुनकुन पर्वत की तलहटी के ढलवां किनारों पर भी मरुद्यानों की पट्टियां हैं।
पश्चिम एवं उत्तर में काशगर यारकंद कूचा और कर शहर एवं दक्षिण में खोतान के प्रसिद्ध मरुद्यान अवस्थित हैं। मध्य एशिया के विस्तृत क्षेत्र में बसने योग्य स्थान केवल मरुद्यान ही थे, जिनके इर्द गिर्द ही विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे। उन्हीं क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार था। कुछ शताब्दियों तक यह क्षेत्र बौद्ध धर्म एवं संस्कृति के केंद्र बने रहे।
अब चीनियों का अधिकार हो जाने से सभी स्थानों के नाम भी बदल गए हैं।
अब काशगर को कुशा, कूचा को फूचे, यारकंद को नाफोवो, नियको नीजम, तुरफिन को काविचेंग, खोतान को कुस्तान कहा जाता है।
इनमें तारिम घाटी के दक्षिण में खोतान सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण उद्यान है।
सेनेटकृत खरोष्ट्री डॉक्यूमेंट्स ग्रंथ में पांच छोटे राज्यों की चर्चा है, जिनके नाम पैपिया तजिक अंगोक माहिरी एवं मास्यान थे। इनके राजा कुशान शाही पदवी धारण करते थे। उन्हें महाराज रायतिराय और देवपुत्र भी कहा जाता था। बहुत प्राचीन काल में चीन का पश्चिम से संबंध दो व्यापारिक मार्गों द्वारा स्थापित था। ये मार्ग मध्य एशिया होकर जाते थे। चीन की सीमा से तारिम घाटी होकर बलख तक यह मार्ग चले गए थे। इन्हें सिल्क मार्ग कहा जाता था।
चीन का रेशम रोमन साम्राज्य के देशों में बड़े पैमाने पर इन्हीं रास्तों से जाता था, इसलिए उनका नाम सिल्क मार्ग पड़ गया था।
पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन रास्तों का व्यवसाय तथा यातायात प्रयोजनों के लिए भरपूर प्रयोग होता था। इनके अतिरिक्त एक तीसरा मार्ग और था, जो भारत और मध्य एशिया को मिलाता था। यह श्रीनगर से गिलगित होता हुआ काशगर तक पहुंचता था। भारत से मध्य एशिया में बुद्ध धर्म मुख्यतः इसी मार्ग से गया था। कांसू प्रांत में स्थित तुनहोंग नगर तीसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचारकों का प्रमुख केंद्र था। शोधकर्ता इलियट के तत्वावधान में फ्रांसीसी पुरातत्ववेताओं ने कचियन खोतानी सीरिक तिब्बती और संस्कृत भाषाओं के जो प्राचीन ग्रंथ एवं लेख उपलब्ध किए हैं, उनमें बौद्ध धर्म द्वारा बहुत कठिनाइयों का सामना करके इस मार्ग का निर्माण और उपयोग करने का उल्लेख है। सैंड बरीड रूइंस ऑफ खोतान ग्रंथ में भी इस मार्ग के प्रयोजन निर्माण और उपयोग की चर्चा है। बौद्ध इतिहासकार बुद्ध घोष ने इस क्षेत्र का उल्लेख कुरुरथ्य नाम से किया है।
उसने अपने ग्रंथ पापांतदानी में भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने के लिए उत्साही धर्मप्रचारकों के भारत से जाने की चर्चा की है।
परजटेरकृत डायनेस्टीज ऑफ द कली एज कलियुगीन राजाओं की वंशावली में उल्लेख है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के उपरांत सम्राट अशोक ने बौद्ध गुरु मोदगली पुत्र तिष्य के निर्देशन में तृतीय बौद्ध महासभा संगीति बुलाई, जिसमें निश्चय किया गया कि तथागत के धर्म संदेशों का प्रसार करने के लिए विदेशों में धर्म पुरोहित भेजे जाएं। तदनुसार गांधार के लिए मच्छंतिक यूनान में महारक्षित और लंका में महामहिंद के नेतृत्व में धर्म विजय के लिए प्रचार मंडल भेजे गए। इस निर्णय का उल्लेख टाडनकृत इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ महावंश में भी है और अशोक के 13वें शिलालेख में भी उसकी चर्चा है। कनिष्क का राज्य खोतान से लेकर सिंध तक फैला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की वृद्धि उसकी सहायता से ही हुई थी।
उसमें छात्रों के अतिरिक्त 3000 अध्यापकों तथा प्रचारकों के रहने योग्य कमरे बने थे।
मथुरा में कनिष्क की मूर्ति के साथ जो शिलालेख पाया गया है उससे प्रतीत होता है कि उसका राज्य बढ़ते बढ़ते मथुरा तक पहुंच गया था। एपिग्राफिका इंडिया ग्रंथ के भाग 6 में विस्तार पूर्वक उन प्रमाणों का संकलन है जिनसे यह सिद्ध होता है कि मध्य एशिया के सुविस्तृत भाग में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। प्राकृत और संस्कृत के अतिरिक्त उस क्षेत्र में खरोष्ट्री, उइगुरु, तोरवारी, खोतानी, कूची, सोगरी आदि जो स्थानीय भाषाएं प्रचलित थीं, उनमें भी बौद्ध के ग्रंथों का अनुवाद उपलब्ध हुआ है। पुरातत्ववेताओं ने मध्य एशिया क्षेत्र के पिछले इतिहास पर प्रकाश डालने वाली खोजें बहुत परिश्रम पूर्वक की हैं। कॉलोनेल बोवर ने भोजपत्रों पर लिखा एक प्राचीन ग्रंथ बहुत कीमत देकर खरीदा था।
यह क्षेचा कृत्र में कुमतुरा स्थान में रेत के नीचे गड़ा हुआ मिला था।
यह 4वीं शताब्दी का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। फ्रांसीसी विद्वान डुट्रेल डीरिहंस ने भी खोतान से ऐसा ही भोजपत्रों पर लिखा हुआ प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया था।
यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में है और खरोष्ट्री लिपि में 2वीं शताब्दी में लिखा गया है।
इसी प्रकार सर अरल्स्टेन, वान लोकोट, पाल पीलिय, सेनेट, बुहल, कोनाव आदि विद्वानों ने इस प्रकार की खोज में बहुत प्रयत्न किया है।
रूस के क्लेमेंट्स और जापान के काउंट ओनानी भी इन प्रयत्नों में पीछे नहीं रहे हैं।
होनल रचित मैन्युस्क्रिप्ट रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फाइंड इन तुर्किस्तान ग्रंथ में इन खोजों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त H.O.W. बेली के बुद्धिस्ट टेक्स्ट नानजियो के ए केटलॉग ऑफ द चाइनीज ट्रांसलेशन ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रिपिटक, T.O. बेरो के द लैंग्वेज ऑफ खरोष्ट्री डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम चाइनीज तुर्किस्तान, J.O. टाकाकुम कृत ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन आदि ग्रंथों में विस्तार पूर्वक इन खोजों का वर्णन किया गया है जो प्राचीन काल में मध्य एशिया के सुविस्तृत क्षेत्र पर प्रकाश डालती हैं। पिछले दिनों इस प्रकार के जो प्रमाण मिले हैं उनकी संख्या 764 है।
17वीं शताब्दी के प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा समुदाय मध्य एशिया के ताशकंद नगर तथा आसपास के कस्बों में बसा हुआ था।
ताशकंद, बुखारा, समरकंद आदि में उनकी कितनी ही कारवांसराएं थीं। मार्गोलान, नीपांगन में भारतीयों की अच्छी बस्तियां बसी हुई थीं। समरकंद और बुखारा की चाय मंडी पर उनका आधिपत्य था।
मध्य एशिया का तुर्किस्तानी भाग पीछे कुछ तो रूस में जुड़ गया और कुछ चीन में।
इससे पूर्व उसकी स्थिति स्वतंत्र थी। इस समय वहां भारतीय विभिन्न व्यवसायों में लगे थे। जौहरी, स्वर्णकार, व्यापारी, साहूकार, वस्त्र निर्माता, किसान, पुस्तक व्यवसाय आदि वर्गों में भारतीयों की बहुत संख्या थी। मध्य एशिया में बुद्ध धर्म किस प्रकार बोया गया, उगाया गया और बढ़ाया गया, इस संबंध में अधिक जानकारी देने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की नामावली इस प्रकार है। 1. अकनुमा कृत डिक्शनरी ऑफ बुद्धिस्ट इंडियन प्रॉपर नेम्स। 2. रतनचंद्र अग्रवाल कृत लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट मॉनक्स इन चाइनीज तुर्किस्तान। 3. P.0C.0 बागची कृत इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। 4. चारू सियांग कांग कृत इंडो चाइनीज रिलेशंस। 5. हेडेचिन कृत सेंट्रल इंडिया एंड तिब्बत। 6. विलियम मॉन्टगोमरी कृत द अर्ली एम्पायर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। 7. N.0 दत्ता कृत गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स। चीनी क्षेत्र में भारत से पहुंचे बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कब, किस प्रकार, किसके द्वारा हुआ, इसका विवरण जानने के लिए अकनुमा कृत दी कंपेरेटिव कैटलॉग ऑफ चाइनीज आगमाज एंड पाली निकायाज, अनेस्की कृत पाली एलिमेंट्स इन चाइनीज बुद्धिज्म आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। बौद्ध धर्म के भारत से मध्य एशिया पहुंचने का मध्य केंद्र कश्मीर रहा है। दोनों देशों के बीच भाषा संपर्क बनाने संबंधी साधन उपलब्ध कराने की सुविधा कश्मीर से ही संपन्न होती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में कश्मीरी पंडितों का ही बाहुल्य था। कुमारजीव सिंघभूति, यशस पुष्यनाथ, धर्म यशस, बुद्ध यशस, विमलाक्ष, धर्ममित्र, धर्मक्षेम, जीवगुप्त, धर्मगुप्त, धर्मकंद, अजित गुप्त, काश्यप मातंग, बोधि रुचि, सुधाकर सिंह, उपशून्य आदि उद्भट विद्वान तथा परम नैष्ठिक बौद्ध भिक्षु मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा विस्तारकर्ता माने जाते हैं।
इनमें से अधिकांश का परिचय विवरण यही बताता है कि उनमें से कितने ही तो कश्मीर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में ही जन्मे थे।
तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक बड़ा विभाग इसी प्रयोजन के लिए था कि वह भारत से मध्य एशिया जाने वालों तथा एशिया से भारत आने वालों की भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करे और भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय कराए।
इतना ही नहीं, वह इन लोगों के लिए आवश्यक साधन सामग्री भी जुटाता था।
तक्षशिला में यह विशेषता नालंदा से भी कहीं अधिक थी।
नालंदा में इस प्रकार का प्रशिक्षण तो था, पर वह भारत के मध्य में अवस्थित होने के कारण व्यावहारिक दृष्टि से बहुत अधिक कार्य नहीं कर सकता था।
भारतीय धर्म प्रचारकों को इस बात का सदा ध्यान रहा कि वे स्थानीय धर्म प्रचारक तैयार करें। इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर ही इतनी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकना संभव हो सका और एशिया महाद्वीप का प्रायः आधा भाग बौद्ध धर्म के झंडे के नीचे आकर खड़ा हो सका। आंशिकोप तो बुद्ध की तरह ही एक समृद्ध राज्य के राजकुमार थे, जिन्होंने राजपाट छोड़कर प्रव्रज्या की दीक्षा ली थी।
पार्थिया से चलकर वे चीन पहुंचे और राजा प्रजा के दोनों क्षेत्रों को अपने तप, त्याग तथा प्रवचनों से प्रभावित करते रहे।
लेकिन बौद्धिक U0N0 चाइने ग्रंथ में शीको के कार्यकलाप पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। चिल्किया चाउन ह्यून चियो काडमोट सिया चुप्ती तन को काम की यू आदि विद्वान मध्य एशिया के ही निवासी थे। स्थानीय परिस्थितियों से अधिक परिचित होने तथा भाषा संबंधी कठिनाई से बचे होने के कारण उनकी सफलताएं और भी अधिक सुविस्तृत एवं सहज संभव हो सकी। जारी रखें।